समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर हम आज फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं सुबह के 7:30 होते ही, और ये प्रोग्राम है न्यूज मैगजीन आज सवेरे का। और इस कार्यक्रम के साथ, इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
Hello, Devendra. Very good morning to you and all our listeners tuned in to us this Saturday morning. Welcome to another interesting session of Art Saveri. So, friends, stay with us and enjoy. For starters, Devendra, let's give them some news headlines.
जी, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबरों के साथ करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। जब्त किए गए 44,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों का पखवाड़े के दौरान निपटान किया जाएगा। श्री शाह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल इकाई के कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश भर में मानस 2 हेल्पलाइन की सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस पोर्टल पर जानकारी तत्काल साझा करने, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में राज्यों का मूल्यांकन करने और नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की प्रभावशीलता पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पूरी तरह समाप्त करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय वर्ष 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 सूत्रीय नीति लागू कर रहा है। इसमें संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और जन जागरूकता अभियान शुरू करना शामिल है।
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India has the potential to reach $100 billion in combined exports from the food and beverage, F&B, agriculture and marine products industries in the next 5 years. Addressing on the sidelines of Indus Food 2025 in New Delhi, the minister emphasized that the target is achievable, requiring a combined annual growth rate of 14-15%. Mr. Goyal highlighted government's unwavering support to the food and beverages sector. He said the government has allowed 100% foreign direct investment in the F&B sector and makes it easier for foreign nationals to obtain work permits to establish businesses in India. The minister urged Indian companies to invest in innovation, better packaging, sustainability and to mechanize their process to enhance hygiene and efficiency. He also highlighted the government's focus on making farming processes more sustainable, promoting organic farming and expanding food testing laboratories across the country.
जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिन का विशेष आयोजन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल वर्षगांठ का आयोजन 11 जनवरी को किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे।
French President Emmanuel Macron has announced that Prime Minister Narendra Modi is set to embark on a state visit to France, followed by his participation in the Artificial Intelligence Summit scheduled to be held next month. Speaking at the French Ambassador's Conference, President Macron described the upcoming AI Summit as a summit for action, aimed at fostering meaningful discussions on artificial intelligence. He emphasized that the event will provide a platform for a dialogue among all major global powers on the critical subject of artificial intelligence. U.S. President-elect Donald Trump has been sentenced to unconditional discharge in connection with his conviction in the Hush Money case. Unconditional discharge confirms Mr. Trump's conviction in the case without consequences. It means the incoming president will not be imprisoned, fined, or face probation, but his conviction still stands, and he will still take office as the first U.S. president with a felony conviction. Last year, before the November presidential election, a jury convicted Mr. Trump on 34 charges of business fraud related to hush money payment to Stormy Daniels during the 2016 presidential campaign.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने यह विचार उद्यमी निखिल कामत को दिए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा अब सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर रुचि ले रहे हैं। और खेलों में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की सियो स्युंग जी और किम वोन हो से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:40 से खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की यू सिन ओंग और ई त्यो की जोड़ी को हराया था।
इन द मेन्स हॉकी इंडिया लीग द तमिलनाडु ड्रैगन्स डिफीटेड द Shrachi Rar Bengal Tigers 2-1 in a thrilling match played at the Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela last night. We have more from our correspondent.
In a hard-fought league match of the Hockey India League on Friday, the Tamil Nadu Dragons edged out the Bengal Rar Tigers 2-1. The first quarter saw a battle of attrition, with neither side creating enough chances and circle penetrations at a premium. Tamil Nadu broke the deadlock in the 16th minute when Uttam found Karthi Selvam with a reverse flick that was smartly deflected into the net by the former. The Tigers roared back into the game when skipper Rupinder Pal converted a penalty stroke by sending ace keeper David Hart the wrong way in the 35th minute.
Rupinder Pal Singh, teesra goal aapke liye HIL mein.
Bengal were on the ascendancy from this point onwards and managed numerous penalty corners as well as circle penetrations. However, against the run of play, Tamil Nadu went up after Ludwig made a great run and then cut it back for Uttam, who placed it home nicely just 2 minutes after the equaliser. Thereafter, with the Dragons 2-1 up, Bengal dominated the game, but Rupinder was strangely off colour, missing a penalty stroke that was given after a lengthy referral while also misplacing several penalty corners despite trying numerous variations. As Hart had a stellar day in goal and Dragons captain and eventual player of the match Amit Rohidas defending gallantly.
Jab opponent PCA attack karte hain to mera jo itna cool calm aaram se rehta hu main jo attacker ke paas us hisab se maine follow karke jata hu aur main apna team ke liye main jitna bhi best dene ke liye koshish karta hu main deta hu.
The Dragons saw 2 yellow cards late in the piece and were down 2 men but still held on as Bengal failed to convert their chances. On Saturday we will see a double header with Delhi SG Pipers facing the UP Rudras and Hyderabad Tufans taking on the Surma Hockey Club. This is Shaurya Chaudhary for Akashvani.
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम प्रमुख खबरें और खेल खबरें भी, और अब हम रुख करेंगे अपने महानगरों का। तो आइए जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या समाचार हैं सुभद्रा के पास।
या देवेंद्र, वी स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। अ सिंगापुर बाउंड एयर इंडिया फ्लाइट वाज फोर्स्ड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग बैक एट चेन्नई ऑन फ्राइडे ड्यू टू अ सडन मैकेनिकल फेलियर। All 167 people on board, including 159 passengers and 8 crew members, were saved. The flight reported technical glitches midway, and the pilot alerted the Chennai Airport control room and was instructed to return for an emergency landing. Passengers were disembarked and accommodated in the terminal lounge while engineers examined the aircraft. An alternative flight was arranged for the passengers to proceed to Singapore. The Tamil Nadu government is exploring the possibility of building a sea bridge from Chennai's lighthouse to Mamallapuram on the lines of Atal Setu Bridge in Mumbai. The Minister for Public Works, E. Velu, said that a detailed project report has been prepared in the same manner. He also said that the mode of funding for the project was underway as the state was discussing whether to seek funds from the union government or from private players or to manage with state funds. The minister said that the stretch between Thiruvanmiyur and Akkarai would be widened by laying 6 lanes to ease the traffic on the ECR. Work would be undertaken by the newly formed State Highways Authority. Heading to Bengaluru now, The Air Force Station in Bengaluru will pay homage to the brave hearts from Indian Armed Forces for their supreme sacrifice and dedicated service to the nation on the 9th Armed Forces Veterans Day on January 14. The day is observed as Veterans Day to mark the birth anniversary of late Field Marshal K.M. Kariappa, who retired on this day in 1953. Field Marshal Kariappa from Coorg in Karnataka was a towering figure in India's military history. He was the first Commander-in-Chief of the Indian Army who led our forces to victory in war against Pakistan. To honour this great son of India, the Air Force officers will organise a wreath-laying ceremony at its Training Command War Memorial to honour our martyrs. The veterans will be felicitated to create a bond with the serving personnel. There will be a medical care camp, grievance redressal interaction and rehabilitation service. Around 2,500 veterans of all the three services are expected to attend the Veterans Day. Getting to Hyderabad now, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has assured the tribal representatives of the government's commitment to their welfare, emphasising the need to strengthen integrated tribal development agencies, ITDAs, and enhance basic amenities in tribal areas. Speaking at a meeting held with representatives of tribal associations and public leaders in Hyderabad yesterday to address key issues impacting tribal communities, the Chief Minister announced the establishment of a dedicated study circle for tribal students and directed officials to clear pending overseas scholarships. He also ordered the recruitment of teaching and non-teaching staff for approved B.Ed. colleges in tribal areas. Mr. Reddy declared Kumaram Bhim's birth and death anniversaries as official state events. Telangana State Chief Minister A. Revanth Reddy has said the welfare of the poor and the state development are the two eyes of the government. He asserted that the responsibility of instilling trust among people in the government lies with the district collectors, who are the real representatives of the government at the ground level. Addressing the collectors' conference held in Hyderabad last evening, the Chief Minister emphasized that it is the only collector who reaches the benefits of various schemes at the people's doorsteps, and their performance is the measurement of the government's achievement. And Devendra, what about other news?
Ji. दिल्ली मुंबई और कोलकाता की खबरों की बात करें तो दिल्ली में चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कल ये अधिसूचना जारी हुई और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन के पहले दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 9 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। पर्चे दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है 17 जनवरी है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने घर घर जाकर बैठकें की। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने भी प्रचार किया। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टर मुखर्जी सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर निगम में उपायुक्त राजभाषा श्री बीपी भारद्वाज उपस्थित रहे। श्री भारद्वाज ने कहा कि हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था रविंद्र यादव ने कहा है कि दोनों आयोजन गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव मानव संसाधन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, इसलिए अगले एक महीने तक दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देना होगा। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। मुंबई का रुख करते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कल महाराष्ट्र में आर्द्र भूमि के संरक्षण और परिरक्षण के लिए स्वप्रेरणा से एक जनहित में सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 2024 के आदेश के आधार पर ये सुनवाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों को देशभर में आर्द्र भूमि, जिसे रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में भी जाना जाता है, के संरक्षण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र आर्द्र भूमि प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। इससे न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। पीठ ने मामले की सुनवाई 25 फरवरी को तय की है। रामसर कन्वेंशन साइट आर्द्र भूमि है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है। भारत में 85 ऐसी साइटें हैं जिनमें से 3 महाराष्ट्र में हैं। ये बुलढाणा जिले में लोनार झील, नासिक जिले में नंदूर मधुमेश्वर और ठाणे क्रीक हैं। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत 5,30,045 किसानों को 535,65,00,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि ये सहायता राशि आपदा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की गई है। श्री मकरंद ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने में हमेशा प्राथमिकता दिखाई है और मार्च 2023 से अब तक 9,307 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने किसानों के ई केवाईसी को शीघ्र पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जिससे लंबित मामलों के सत्यापन में तेजी आई है। पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेले का कल शुभारंभ हुआ। दक्षिण 24 परगना जिले के जिला मजिस्ट्रेट सुमित गुप्ता ने मेले का उद्घाटन किया। देशभर से श्रद्धालु मेला स्थल पर जुट रहे हैं। सरकार ने मेला क्षेत्र में सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष प्लास्टिक मुक्त ग्रीन मेला के लिए विशेष पहल की है। मेला परिसर में प्लास्टिक बैग लेकर आने वाले तीर्थयात्रियों को बायोडिग्रेडेबल बैग दिए जाएंगे। सुरक्षा घोषणा और अन्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मेला स्थल पर एक मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सागर द्वीप से आगे की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए कोलकाता में हुगली नदी के आउटम घाट पर के पास मैदान में शिविर बनाए गए हैं। और महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज फिर से बादल छाने और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है, यानी सुभद्रा सर्दी और बढ़ने वाली है।
Yes, that's true.
जी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि कई राज्यों में न्यूनतम तापमान इस रेंज से ऊपर रहता है। मुंबई का ही उदाहरण लीजिए, जहां पर न्यूनतम तापमान आज 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो आज दिन का तापमान 15 डिग्री दिल्ली में रहेगा और न्यूनतम 8 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में हल्का कोहरा और हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18, जैसा कि मैंने बताया, और 32 दिन में तापमान हो सकता है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, दिन में पारा 24 डिग्री और रात में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा सुभद्रा, आप बताइए।
या चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई विल बी सीन लेटर ऑन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 16 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 18 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस।
और मौसम के बाद अब समय है इतिहास के झरोखों से देखने का कि आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी रहीं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। इस क्रम में सबसे पहले जानकारी 1569 के उस इवेंट की, जब लॉटरी की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में पहली बार लॉटरी की शुरुआत की गई थी। और 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। वर्ष 1753 में स्पेन नरेश जोकिन मुराद ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ने की घोषणा की थी।
In 1787, William Herschel, a German astronomer, discovered the first two moons of Uranus 6 years after he had discovered the planet on 13th March 1781. And in 1813, the very first pineapple tree was planted in Hawaii Island. And in 1861, Alabama became the fourth state to withdraw from the Union. And also in 1878, milk was delivered for the first time in glass bottles in New York City. And 1902, Popular Mechanics magazine was published for the first time. And 1908, President Theodore Roosevelt proclaimed the Grand Canyon National Monument, and again it became a national park in 1919. And in 1913, the first enclosed sedan-type automobile, a Hudson, went on display at the 13th National Automobile Show in New York. And, oh, yes.
Yes. 1923 में प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के विरोध के बावजूद फ्रांस और बेल्जियम के सैनिकों ने जर्मनी के रूर क्षेत्र पर कब्जा आज ही के दिन किया था।
And 1922 this day, insulin was used for the first time on humans to treat diabetes. Leonard Thompson, a 14-year-old man from, I beg your pardon, a boy rather, from Canada, got the first shot of insulin. And then what else was happening this day? Yes, in 1927, the creation of Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences was proposed during a dinner of Hollywood luminaries at the Ambassador Hotel in Los Angeles. And in 1964, U.S. Surgeon General Luther L. Terry announced that cigarette smoking is linked to lung cancer.
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार कर लिया था आज ही के दिन और वर्ष था 1942 का. 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया था और भारत में अखबारी कागज का उत्पादन आज ही के दिन वर्ष 1955 में शुरू हुआ था. और अब स्मरण उन विभूतियों का जिनके कार्य और विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं. इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं एक वीरांगना को जिनका नाम है सरस्वती राजा मणि. स्वाधीन भारत की मिट्टी को कई जाबाजों ने अपने खून और पसीने से सींचा है. भारत को अंग्रेजों के अत्याचार और दमन से मुक्त कराने में हजारों हजार बलिदानियों ने अपना योगदान दिया है. हम याद कर रहे हैं एक ऐसी देशभक्त की जिन्होंने अपने स्तर से अंग्रेजों को कमजोर किया और वो हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस सरस्वती राजामणि. परिवार समृद्ध था लेकिन देश प्रेम के जज्बे ने उन्हें सिंगापुर में आजाद हिंद फौज ज्वाइन करने के प्रेरित किया. 16 साल की उम्र में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी आह्वान से प्रेरित हुई और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी. सरस्वती राजामणि अपनी साथी दुर्गा के साथ ब्रिटिश सिपाहियों के खेमे में घुसी. मिशन के लिए उन्होंने अपने केश काटे. वो लड़का बनकर खेमे में ही रहने लगी. अंग्रेज सिपाहियों के कपड़े धोती, जूते पॉलिश करती और ये सब करते हुए उन्होंने कई अहम जानकारियां जुटाई और इन सबके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला. भारत के स्वाधीन होने के एक दशक बाद 1957 में सरस्वती राजामणि भारत लौटी और त्रिची में बस गई.
We remember Lal Bahadur Shastri, the nation's second Prime Minister, who passed away on this day in 1966. His leadership was pivotal during the Indo-Pakistani War of 1965, and he famously championed the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, to emphasize the importance of self-reliance for national strength. Shastri preferred his actions and achievements to speak for themselves rather than making great promises. And friends, time changes everything except something within us, which is always surprised by change. So said Thomas Hardy, the famous British poet, novelist. While Hardy wrote poetry throughout his life and regarded himself primarily as a poet, his first collection was not published until 1898. Initially, therefore, he gained fame as the author of such novels like Far From the Madding Crowd, The Mayor of Casterbridge, etc. Hardy passed away this day in 1928.
जी. और हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं कवि दूधनाथ सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है. दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से 70 के दशक में भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को चुनौती दी थी. दूधनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया के सोबंथा गांव में 17 अक्टूबर 1936 को हुआ था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के पश्चात कुछ दिनों तक कोलकाता में अध्यापन किया और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन करने लगे. सेवानिवृत्ति के बाद जीवन पर्यंत लेखन के लिए समर्पित रहे. दूधनाथ सिंह ने लौट आ उधार, निराला आत्महंता आस्था, सपाट चेहरे वाला आदमी, यमगाथा, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जैसे कालजयी कृतियों की रचना की. उनकी गिनती हिंदी के चोटी के लेखकों और चिंतकों में होती थी. उनके तीन कविता संग्रह एक और भी आदमी है और अगली शताब्दी के नाम और युवा खुशबू भी प्रकाशित हुए. दूधनाथ सिंह का देहावसान 11 जनवरी 2018 को हुआ और वो पंचतत्व में विलीन हो गए. और भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक का आज जयंती है. वे स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे. वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन 1915 में जो लखनऊ में हुआ था उसके सभापति बने. उन्हें कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया. हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर श्रीधर पाठक का समान अधिकार था. श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता की. उनकी ब्रजभाषा सहज और निराडंबर है. परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने प्रायः नहीं किया है.
birthday of a very noble children's rights activist, K.L.R. Siddharthi, was awarded the Nobel Peace Prize for focusing attention on the grave exploitation of children for financial gain. Another important reason was that he followed the non-violent tradition of Mahatma Gandhi. Siddharthi founded the Save the Childhood Movement, BBA, and the Good Weave organization, which certifies carpet manufacturers who do not use child labor in their production. As of 2014, Siddharthi and his colleagues had freed 83,000 children from slavery. He started this movement in 1998 by leading a march against child labor. This protest helped spur the United Nations International Labor Organization, that's ILO, to adopt a convention protecting children against exploitation and hazardous work. And friends, the queen of hip-hop, soul, songwriter, singer, Mary J. Blige celebrates her birthday today. Born in Bronx, New York, Mary's early musical influences included singing in a Pentecostal church and listening to her mother's collection of soul records. Let's hear a snatch of our big-time hit, Family Affair, a song about unity, brotherhood, and love. And friends, Dire Straits was the rock staple of the 80s. The person behind the distinctive, powerful rhythms, the drummer boy of Dire Straits, Terry Williams, turned a year older today. Terry, of course, replaced the original drummer Pick Withers and stayed with Dire Straits till they disbanded in 1988. Terry is a self-described instinctive drummer who plays for the joy of the beat, and his crisp, incisive and dynamic style has developed through years of playing everything from basic rock and roll to jazz, fusion to lounge music. Listen up to this tune called Heavy Fuel.
Last time I was sober, man, I felt bad. Worst hangover that I ever had. It took six hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you're
भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद दमार शैली के प्रसिद्ध गायक पंडित राम चतुर की आज पुण्यतिथि है. अभी आपने वेस्टर्न म्यूजिक सुना और अब हम आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनवाते हैं.
लवली, ग्रेट फ्यूजन इज गोना बी, राइट?
और उन्होंने ध्रुपद दमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की और देश का नाम रोशन किया. मलिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे. राम चतुर मलिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा जिले के चमथा गांव में हुआ था. इनके पिता का नाम पंडित राजित राम था, जो दरभंगा महाराज के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे. ये माना जाता है कि पंडित रामचतुर मलिक के पूर्वज राजस्थान से बिहार आए थे और संगीत में दरभंगा घराने की नींव रखी थी.
Guitar virtuoso Lee Ritenour from Los Angeles, California, celebrates his birthday today. Starting at the age of 16, Ritenour played his first session with old popular group, the Mamas and the Papas. 2 years later, he was backing Tony Bennett and Lena Horne at LA's Dorothy Chandler Pavilion. Known as Captain Fingers, Ritenour became a sought-after session player in the mid-70s. Now, of course, he's a solo man, continues to thrill fans with his jazz and funk fusion. One of the greatest batsmen of our times, Rahul Dravid, was born on this day in 1973. The former Indian cricketer skipper was the head coach till July 2024. And of course, under his coaching, the under-19 team won the 2018 World Cup and finished as a runner-up in the 2016 under-19 World Cup. Dravid is always known for his classy batting style and techniques.
Ji, aur Bharatiya tennis khiladi Ankita Raina ka bhi aaj janmdin hai. Unhone ITF mahila circuit mein 8 singles aur 14 doubles khitab jeete hain. April 2018 में उन्होंने एकल यानी सिंगल रैंकिंग में शीर्ष 200 में प्रवेश किया. और श्रोताओं, इसके साथ ही हम आप सभी से चाहेंगे अनुमति आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड.
स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे.
नमस्कार.